Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala man kana nabiyyan wa adamu bain al-ma'i wat-teen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'audhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aaj hamari is ruhani tarbiyati nashid ka unwan hai Masjid ke aadab. آپ جانتے ہیں کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کا ادب احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسی سے غافل ہیں اور اکثر لوگ تو بالکل نابلد ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسجد کے آداب کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، خود بھی ادب کریں، دوسروں کو بھی ادب کرنے کی تلقین کریں، اور خصوصاً اپنے بچوں کو جب لے جائیں تو ان کو بھی پہلے سے مسجد کے آداب کے متعلق ان کو بتائیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں اور عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ جمعے کے دن آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اول ساعت میں مسجد میں پہنچا جائے، خطیب صاحب کی تقریر سنی جائے، خطبہ سنا جائے، نماز پڑھی جائے، اور پھر سنتیں وغیرہ پڑھ کے اطمینان کے ساتھ انسان واپس آئے. اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ تو بات الگ ہے کہ آپ کسی بہت ہی ایسے کام میں ہیں کہ آپ تقریر نہیں سن سکتے، آپ نے خطبہ سنا اور فوراً نماز پڑھتے ہی روانہ ہو گئے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن پہلے سے جانا حدیث شریف میں اس کے لیے فضیلت بھی آئی ہے کہ جس طرح کے فرمایا گیا کہ پہلی ساعت میں جو گیا وہ ایسا ہے جس نے اونٹ کی قربانی کی، دوسری ساعت میں اس نے گائے کی قربانی کی، تیسری ساعت میں اس نے مینڈے کی قربانی کی، چوتھی ساعت میں اس نے ایک مرغی کی قربانی کی. اس طرح یہ سب مختلف درجے اور مرتبے ہیں. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود دیر سے جانا اور خطبے کے وقت پہنچنا. حدیث شریف کے مطابق فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور مساجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں. جو اول ساتھ میں آیا اس کا نام لکھ دیا، دوسری ساتھ میں آیا اس کا نام لکھ دیا، تیسری ساتھ میں آیا اس کا نام لکھ دیا، ایک کے بعد ایک جو آتا رہا ان کے نام لکھے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا فرشتوں نے اپنے دفتر لپیٹ دی. اب جو بعد میں آیا اس کا نام خطبہ پڑھنے والوں میں نہیں لکھا گیا. آپ غور کریں، آپ مسجد میں گئے، آپ نے نماز بھی پڑھی، لیکن آپ کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں نہیں آیا. تو یہ کیسی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے جائیں، پہلے سے بیٹھیں، تاکہ ہمارا نام جمعے کی نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو اور وہ ساری فضیلتیں جو حدیث شریف میں پہلی، دوسری، تیسری ساتھ کی آئی ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں. یاد رکھیے، انتظار صلات یہ صلات میں داخل ہے. جتنی دیر آپ نماز کا انتظار کریں گے وہ تمام وقفہ لکھا جائے گا نامہ اعمال میں کہ اس نے اتنی دیر نماز پڑھی. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اچھا، لوگوں کی کیفیت کیا ہے کہ ایک تو خطبے کے وقت آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ سنتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ جا کر مسجد میں بیٹھیں اور خطبے کے دوران نہ کوئی گفتگو کریں، نہ کسی سے کوئی بات کریں، نہ کوئی کام کہیں، نہ کوئی کام کریں. حدیث شریف کے مطابق اگر اس نے یہ کہا کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھ دو یا رکھ دی تو فرمایا کہ یہ بھی اس نے لغو کام کیا. اتنی سی بات آپ غور کریں. اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم خطبے کے دوران گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، خطبے کی طرف توجہ نہیں ہے. اچھا، جو دیر سے آئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہو کر سنیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز پڑھیں اور فوراً نکلیں، جبکہ مسجد کے اوپر کی منزل خالی ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ اوپر جانا نہیں چاہتے یا جانے میں کوئی دشواری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو جہاں پر ہوں وہیں بیٹھ جائیں. خطبہ ہمیشہ बैठ कर सुनना चाहिए। खुतबे के दौरान गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। खुतबे के दौरान किसी किस्म का कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाद लोग खुतबे के दौरान सुन्नतें पढ़ना शुरू कर देते। देखिए, सुन्नतों का मसला ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाजा सलातुल बैत, ये घर की नमाज है। होना ये चाहिए कि सुन्नतें आप घर में पढ़ें, फराइज मस्जिद में पढ़ें और फिर सुन्नतें घर में पढ़ें। लेकिन इजाज़त इसलिए दे दी गई पढ़ने की कि अब मशगूलियत का ज़माना है, मसरूफियत का ज़माना है, लोग दुनिया में मुलव्वस हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि जब मस्जिद से निकलें तो भूल जाएं, किसी काम में मशगूल हो जाएं, पता चला कि वो सुन्नतें भी गई। इस वजह से मस्जिद में पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन खुतबे के दौरान न पढ़ें, आप बाद में पढ़ लें, या आप घर से पढ़ कर आ जाएँ, या आप इतनी पहले आएँ कि आप आराम से आकर नमाज से पहले वाली सुन्नतें जो हैं वह आप अदा कर लें। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि देर से आते हैं, या तो खुतबे के दौरान आते हैं, या फिर बिल्कुल नमाज के करीब आते हैं, या खुतबे से पहले भी अगर आते हैं तो दरवाजे पर खड़े होकर जायज़ा लेते हैं मस्जिद का। अब उन्होंने देखा कि चौथी सफ़ में या पाँचवीं सफ़ में जगह खाली है, तो नमाजियों की गर्दनें फलांग कर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर उस सफ़ में पहुँच कर और जाकर बैठ जाते हैं। हदीस शरीफ में इससे भी मना किया गया कि जो शख्स नमाजियों की गर्दनों को फलांग कर आगे जाकर बैठे, फरमाया इसने भी लफ्ज़ काम किया और उसके लिए भी वाइद है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। ये सब मस्जिद के आदाब हैं। सबसे बेहतर चीज़ क्या है कि आप नमाज का अहतमाम करें, आप गुसल करें, अपने जिस्म को पाक करें, साफ़ सुथरा लिबास पहनें, खुशबू लगाएं, पहले से जाकर जुमे के लिए मस्जिद में बैठें। जितनी देर बैठेंगे उतना वक्फा नमाज में शुमार होगा। फिर आपने तकरीर सुनी, खुतबा सुना, नमाज पढ़ी, इत्मीनान के साथ आप वापस आए। तो हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने ऐसा किया तो एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे के दरमियान जितने भी गुनाह हैं सब माफ़ कर दिए। कितना करम है अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन हम इससे गाफिल हैं। हम तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला समझते हैं, जैसे कोई बोझ है, तो बस खुतबा खड़े होकर सुना, नमाज पढ़ी और फौरन निकल गए। ना अव्वल की सुन्नतें पढ़नी, ना आखिर की पढ़नी, ना मौकेदा पढ़नी, ना गैर मौकेदा पढ़नी, बस फौरन निकले और अपने काम में मशगूल हो गए। माज़ल्ला जैसे कोई बोझ हमने उतार दिया, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए। इबादत ज़ौक़ के साथ करें, इबादत शौक़ के साथ करें, इबादत खुशू और खुजू के साथ करें, और ये समझ कर करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मुझे अपने घर में उसने बुलाया है, तो मैं एहतमाम के साथ जाऊँ, एहतमाम के साथ, खुशू और खुजू के साथ इबादत करूँ। फिर एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे मस्जिद में आते हैं, बहुत से लोग रोकते हैं कि नहीं जी, अभी इन पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है, अभी इनकी उम्र 10 साल नहीं हुई, अभी इनकी उम्र 6 साल है, अभी फ़लाँ है, मुख्तलिफ़ बातें लोग करते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। उसका तरीक़ा क्या है कि जब बच्चा ज़रा सा समझदार हो, उसको अपने दीन के मुतालिक बताएं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बताएं, सरकार का नाम, उनके वालदैन का नाम, उनकी औलाद का नाम, सहाबा के नाम, ये सब उनको बताएं, समझाएं, उनको नमाज के लिए मस्जिद में लाएं, उनको बताएं कि साफ़ सुथरा लिबास पहनना है और मस्जिद के आदाब बच्चों को बताएं। बहुत से लोग नमाज के शौक़ में बच्चों को ले आते हैं, लेकिन जाहिर है बच्चा तो फिर बच्चा है, वो मस्जिद में दौड़ता है, भागता है, शोर करता है, बहुत से लोगों की नमाज़ें ख़राब होती हैं, और अक्सर बच्चों को देखा गया है कि खुतबे के दौरान वो पानी पी रहे होते हैं, इधर से उधर भागते हैं पानी लेने के लिए, दरमियान में कूलर रखे हैं, उन्होंने पानी निकाल के पिया, गिराया, एक दूसरे पर फेंका भी। तो जो लोग बच्चों को लेकर आते हैं उन पर ये लाजिम है कि पहले से उनको ये सारी बातें बताएँ, उनको ये आदाब सिखाएँ कि देखो जब खुतबा शुरू हो जाए तो तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं, अगर तुम्हें पानी पीना है तो उससे पहले पी लो या फिर नमाज के बाद पी लो। अभी से हम बच्चों को बताएंगे, तैयार करेंगे, तो जो चीज़ आज आप उसको बता देंगे वो मरते दम तक उसके जहन के अंदर रासिख रहेगी, बाकी रहेगी। लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते, और फिर अक्सर लोग ऐसे हैं जो डांट देते हैं और बच्चों को इस तरह बुरी तरह डांटते हैं कि दोबारा फिर वह मस्जिद का रुख ही नहीं करते। और अक्सर ये भी होता है कि जिनके बच्चे होते हैं उनकी लड़ाई उनसे हो जाती है जो बच्चों को डांटते हैं। यानी ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये गलत फहमी के बिना पर, ना समझी के बिना पर और गलत तरीके से तबलीग करने की बिना पर हो रही। गलती हुई इत्मीनान से समझा दे, उनके वालदैन को समझा दे। इसी तरह नंगे सर नमाज पढ़ने का रिवाज बढ़ रहा है, अक्सर लोगों को देखा है नंगे सर नमाज पढ़ना है। पहले ये था कि एक रुमाल सर पे बांध लिया, कुछ लोग कहते नहीं जी ये मस्जिद की टोपियाँ सही नहीं है, दूसरे के सर की टोपी हम क्यों ओढ़े, तो आप एक जाली वाली टोपी लेके जेब में रख लें या एक रुमाल ही आप रख लें, आप चलें सर पे बांध। और अगर उनसे कहें क्या जी नंगे सर नमाज नहीं होती क्या, हमने कहा नंगे सर आप तो नमाज तो बगैर कपड़ों के भी हो जाएगी अगर ना हो, सतरपोशी ज़रूरी है खाली, फिर बाकी कपड़ों की क्या ज़रूरत। कहने का मकसद ये कि हर चीज़ के आदाब हैं, हर चीज़ की सुन्नतें हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहराम के अलावा कभी भी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि सरकार तो अमामा बांधते थे और अमामा बांधना मुतवातिरा सुन्नत मुतवातिरा दायमा हमेशा बांध, और टोपी भी पहनी सरकार ने, कभी नंगे सर नमाज नहीं पढ़ी। तो हमें उनके तरीक़े को फॉलो करना है, उनकी सुन्नतों को अपनाना है। तो नमाज के आदाब और सुन्नत के खिलाफ है नंगे सर नमाज पढ़ना। ये कहना कि जी नंगे सर नमाज नहीं होती तो नमाज तो वैसे भी हो जाती, होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन आदाब के साथ पढ़ना, सुन्नत के मुताबिक पढ़ना, खुशू और खुजू के साथ पढ़ना, ये फिर एक अलहदा बात। तो जो काम भी हम करते हैं ना, तो हमें चाहिए कि उसके आदाब, उसकी शराइत, उसकी सुन्नतें, ख़ास तौर पर सुन्नतें, इनको अपनाने की कोशिश करें, जैसा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हम वैसा करें। तो इसलिए नंगे सर नमाज पढ़ने से इज्तनाब करें, खुतबे के दौरान गुफ्तगू करने से इज्तनाब करें, खड़े होकर खुतबा सुनने से इज्तनाब करें, मस्जिद के आदाब मलहूज रखते हुए फिर आप नमाज पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, तो आप देखें कि कैफो सुरूर हासिल होगा, खुशू और खुजू हासिल होगा, और पता चलेगा कि वाकई मेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो रही। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसलिए आपके सामने बयान की कि आम तौर पर ये हो रहा है। और एक चीज़ और जो मेरे जहन में आई वो ये है कि अक्सर लोग आकर पीछे बैठ जाते हैं, आगे की मस्जिद खाली है, पिछली सफ़े भरी हुई। अच्छा, जब इकामत होती है तो कहा जाता है कि जी आप अगली सफ़े मुकम्मल कर लें, कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। हालांकि अगली सफ में नमाज पढ़ना, पहली सफ में नमाज पढ़ना, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ, जिसका मफहूम यह है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का क्या अजर सवाब है, तो लोग कुरानदाजी करें कि हम अगली सफ में नमाज पढ़ें। आप गौर करें कि हमारा नाम कुरानदाजी में निकल आए कि हम अगली सफ में नमाज पढ़ें, कितनी फजीलत, और हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। अगली सफ तो बहुत दूर की बात है, दूसरी तीसरी चौथी भी दूर गई, यहाँ तो बिल्कुल आखिरी सफ में, अब वो भी किस लिए, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला की, जैसे हम एक बोझ उतार के फौरन हम भाग रहे हैं, हम निकल रहे हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कोशिश करें कि आगे से आगे बढ़ें, आगे बढ़कर पहली सफ़ों को मुकम्मल करें और पिछली सफ में बैठने से इज्तनाब करें। अगर आप तकरीर के दौरान बैठ गए हैं और जगह नहीं मिल रही, तब आप बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आगे बढ़कर अगली सफ़ों को मुकम्मल करें। ये तमाम नमाज के आदाब हैं, मस्जिद के आदाब हैं। मस्जिद में बुलंद आवाज़ से बोलना, कहके लगाना, हंसना, एक दूसरे पर आवाज़ें कसना और गाली वगैरह देना, ये तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन वैसे भी बुलंद आवाज़ से बोलना, एक दूसरे को पुकारना, ये तमाम चीज़ें गलत हैं। तो इन तमाम आदाब और शराइत जो बताई गई, हमें चाहिए कि इन पर अमल करें और अल्लाह की बारगाह में अपने अमल, अपनी नमाज़ें, इन तमाम चीज़ों की मकबूलियत की दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफैल इसे ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाएगा, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ये तमाम चीज़ें मुंतकिल करें और ये आदाब बताकर उन्हें मस्जिद में ले जाएं, ताकि अभी से उनके जहन के अंदर मस्जिद का अदब, एहतराम, ये सारी चीज़ें कायम रहें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाएं। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।